मैं सचिन कुमार, सामाजिक विज्ञान संकाय द्वितीय वर्ष, संविधान का दर्शन नामक अध्याय शुरू करने जा रहा हूँ। संविधान का दर्शन। प्रत्येक संविधान का अपना एक दर्शन होता है, उद्देश्य संकल्प। हमारे संविधान के पीछे जो दर्शन है, उसके लिए हमें पंडित नेहरू के उस ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प की ओर दृष्टिपात करना होगा, जो संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को अंगीकार किया था और जिससे आगे के सभी चरणों में संविधान को रूप देने में प्रेरणा मिली है। यह संकल्प इस प्रकार है। संविधान सभा भारत को स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न गणराज्य के रूप में घोषित करने के अपने दृढ़ और सत्यनिष्ठ संकल्प की और भारत के भावी शासन के लिए संविधान बनाने की घोषणा करती है, जिनमें उन राज्य क्षेत्रों का जो ब्रिटिश भारत में समाविष्ट हैं, उन राज्य क्षेत्रों का जो अभी देसी रियासतों के भाग हैं और भारत के उन अन्य भागों का जो अभी ब्रिटिश भारत के बाहर हैं, और ऐसी रियासतों का तथा ऐसे अन्य राज्य क्षेत्रों का जो स्वतंत्र प्रभुत्व संपन्न भारत के भाग बनने के लिए सहमत हैं, मिलकर एक संघ बनेगा और उक्त राज्य क्षेत्र अपनी वर्तमान सीमाओं से या ऐसी सीमाओं से जो संविधान सभा द्वारा या उसके पश्चात संविधानिक विधि के अनुसार अवधारित की जाएं, स्वायत्त इकाइयों की परिस्थिति रखने और बने रहेंगे। उन्हें अवशिष्ट शक्तियां होंगी और वे सरकार और प्रशासन के सभी शक्तियों और कृत्यों का प्रयोग करेंगे, केवल ऐसी शक्तियों और कृत्यों को छोड़कर जो संघ में निहित या संघ के समनुदिष्ट है या जो संघ में अंतर्निहित या विविक्षित हैं या उसके परिणाम स्वरूप हैं, और प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ और प्राधिकार उसके संगठक भाग और शासन के सभी लोक से व्युत्पन्न हैं, और भारत की जनता को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की तथा विधि के समक्ष समता, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगम और कार्य की स्वतंत्रता विधि और सदाचार के अधीन रहते हुए होगी, और अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़े और जनजाति क्षेत्रों के लिए और दलित और अन्य पिछड़े हुए वर्गों के लिए पर्याप्त रक्षोपाय किए जाएंगे, और गणराज्य के राज्य क्षेत्र की अखंडता और भूमि, समुद्र तथा आकाश पर उसके प्रभुत्व संपन्न अधिकार, न्याय और सभ्य राष्ट्रों की विधि के अनुसार बनाए रखे जाएंगे, और यह प्राचीन भूमि विश्व में अपना समुचित और गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त करेगी और विश्व शांति तथा मानव कल्याण के लिए स्वेच्छा से अपना पूरा सहयोग प्रदान करेगी। पंडित नेहरू के शब्दों में उपर्युक्त संकल्प संकल्प से कुछ अधिक है। यह एक घोषणा है, यह एक दृढ़ निश्चय है, एक प्रतिज्ञा है, एक वचन है और हम सभी के लिए यह एक समर्पण है। उद्देशिका। उक्त संकल्प में जिन आदर्शों को रखा गया है, वे संविधान की उद्देशिका में दिखाई पड़ते हैं। 1976 में यथा संशोधित इस उद्देशिका में संविधान के ध्येय और उसके उद्देश्यों का संक्षेप में वर्णन है। संविधान की प्रस्तावना इस प्रकार है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर आज अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, मिति मार्क्सिस्ट शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अपने उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों में उद्देशिका का महत्व और उसकी उपयोगिता बताई गई है। उद्देशिका को न्यायालय में प्रवर्तित नहीं किया जा सकता, किंतु लिखित संविधान की उद्देशिका में वे उद्देश्य लेखबद्ध किए जाते हैं, जिनका स्थापना और संप्रवर्तन के लिए संविधान की रचना होती है। जहां संविधान की भाषा में संदिग्धता होती है, वहां उद्देशिका संविधान के विधिक निर्वचन में सहायता करती है। संविधान में समाहित आदर्श और आकांक्षाओं के समुचित अधिमूल्यन के लिए हमें ऊपर उद्धृत उद्देशिका में प्रयुक्त विभिन्न अभिव्यक्तियों की ओर ध्यान देना होगा। उद्देशिका से दो प्रायोजन सिद्ध होते हैं। क, उद्देशिका यह बताती है कि संविधान के प्राधिकार का स्रोत क्या है। ख, वह यह भी बताती है कि संविधान किन उद्देश्यों को संवर्धित या प्राप्त करना चाहता है। स्वतंत्र और प्रभुता संपन्न। जैसे पहले स्पष्ट किया गया है, भारत का संविधान ब्रिटिश पार्लियामेंट की देन नहीं है। यह बात में यह पूर्ववर्ती भारत शासन अधिनियमों से भिन्न है। इसे भारत के लोगों ने एक प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा में समवेत और प्रतिनिधियों के माध्यम से अधिकथित किया था। यह सभा अपने देश के राजनैतिक भविष्य को अवधारित करने के लिए सक्षम थी। हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यह शब्द भारत के लोगों की सर्वोच्च प्रभुता की घोषणा करते हैं और इस बात की ओर संकेत करते हैं कि संविधान का आधार उन लोगों का प्राधिकार है। प्रभुता से तात्पर्य है कि राज्य को स्वतंत्र अधिकार है, अर्थात राज्य को किसी भी विषय पर विधायन करने की शक्ति है। वह किसी अन्य राज्य या बाह्य शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है। गणराज्य। उद्देशिका स्पष्ट शब्दों में यह घोषित करती है कि संविधान के अधीन सभी प्राधिकारों का स्रोत भारत के लोग हैं। किसी बाहरी प्राधिकारी के प्रति कोई अधीनता नहीं है। पाकिस्तान 1956 तक ब्रिटिश डोमिनियन बना रहा, किंतु भारत डोमिनियन नहीं बना और 1949 में संविधान की रचना के बाद से उसने अपने आप को गणराज्य घोषित किया। इसका अर्थ यह है कि जनता के द्वारा जनता के लिए बनाई गई सरकार। हमारे राष्ट्र का प्रमुख निर्वाचित राष्ट्रपति है और राष्ट्रपति सहित सभी पदों पर किसी भी नागरिक की नियुक्ति हो सकती है। प्रभुत्व संपन्न राष्ट्रकुल की सदस्य से असंगत नहीं है। 26 जनवरी 1950 को जब संविधान प्रवृत्त हुआ, इंग्लैंड के सम्राट का भारत में कोई विधिक या संवैधानिक प्राधिकार नहीं रहा। भारत का कोई नागरिक ब्रिटिश सम्राट की प्रतिनिष्ठा नहीं रख सकता। यद्यपि भारत ने अपने आप को गणराज्य घोषित कर दिया, फिर भी उसने ब्रिटिश राष्ट्रकुल से अपने सभी संबंध समाप्त नहीं किए। आयरलैंड ने रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड एक्ट 1948 बनाकर संबंध समाप्त कर दिए थे। वस्तुतः भारत के राष्ट्रकुल में बने रहने के विनिश्चय के कारण राष्ट्रकुल की संकल्पना ही बदल गई, क्योंकि भारत ने सम्राट के प्रति निष्ठा रखना स्वीकार नहीं किया है। उसे प्राचीन ब्रिटिश साम्राज्य की एकता का और उसके साथ ही उसके उत्तरवर्ती ब्रिटिश राष्ट्रकुल का प्रतीक माना है। भारत के इस निर्णय के कारण ब्रिटिश राष्ट्रकुल का जो साम्राज्यवाद का अवशेष था, संघ परिवर्तन हो गया और वह राष्ट्रकुल के समादरणीय नाम से स्वाधीन राष्ट्रों का एक स्वतंत्र संघ हो गया है। यह ऐतिहासिक निर्णय लंदन में 27 अप्रैल 1949 को प्रधानमंत्रियों के सम्मेलन में लिया गया। इस सम्मेलन में हमारे प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने यह घोषणा की कि भारत के प्रभुत्व संपन्न स्वतंत्र गणराज्य बन जाने के पश्चात भी भारत राष्ट्रकुल का पूर्ण सदस्य बना रहेगा और वह सम्राट के स्वाधीन राष्ट्रों के स्वतंत्र संगम के प्रतीक के रूप में और इस प्रकार राष्ट्रकुल के अध्यक्ष के रूप में स्वीकृति देगा। यह ध्यान देने योग्य है कि यह घोषणा विधि बाह्य है। भारत के संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह एक स्वैच्छिक घोषणा है और यह दर्शाती है कि यह एक स्वतंत्र संगम है जिसमें कोई बाध्यता नहीं। यह भारत की इस बात की इच्छा की अभिव्यक्ति है कि वह राजनीतिक अधीनता के समाप्त हो जाने पर भी इंग्लैंड के लोगों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों को समाप्त नहीं करेगा। यह नया संगम स्वाधीन राज्यों के बीच एक सामान्य संगम है। यह इंग्लैंड के सम्राट को राष्ट्रकुल के प्रतीकात्मक अध्यक्ष के रूप में ही स्वीकार करता है। संविधान के पहले उसके भारत के संबंध में कुछ कृत्य थे, किंतु संविधान के बाद उसके कोई कृत्य नहीं रहे। वह भारत के नागरिकों की उसके प्रति राजनिष्ठा की मांग भी नहीं कर सकता। यदि इंग्लैंड के राजा या रानी भारत आते हैं तो उन्हें भारत के राष्ट्रपति की तुलना में कोई पूर्वीकता नहीं मिलेगी। राष्ट्रकुल के सदस्य के रूप में भारत को राष्ट्रकुल सम्मेलनों में प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, किंतु राष्ट्रकूट सम्मेलनों में किए गए विनिश्चय उस पर आबद्ध कर नहीं होंगे। यदि राष्ट्रकुल का कोई सदस्य किसी विदेश शक्ति से कोई संधि करता है या युद्ध की घोषणा करता है तो भारत की अभिव्यक्ति सहमति के बिना वह उस पर आबद्ध कर नहीं होगी। इस प्रकार राष्ट्रकुल से भारत का यह स्वैच्छिक संबंध किसी भी प्रकार से उसकी प्रभुता को प्रभावित नहीं करता है। जब भारत को यह लगे कि संघ में बने रहना सम्मानजनक या उपयोगी नहीं है तो वह अपना संबंध तोड़ सकेगा। जैसा पंडित नेहरू ने कहा था, यह स्वेच्छा से किया गया करार है और इसे स्वेच्छा से समाप्त किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति की अभिवृद्धि। अपने देश में शक्तिशाली विरोध के होते हुए भी भारत ने विशाल हृदय से यह निर्णय लिया था। साम्राज्यवादी शासन के अधीन भोगी गई अनेकानेक व्यवस्थाओं के कारण यह विरोध स्वाभाविक था। अनेकों बार निराशाजनक परिस्थितियों के होते हुए भी अंतर्राष्ट्रीय गुटबाजी के तनाव बने रहने पर भी और 1976 में इंग्लैंड में नस्लवाद के प्रादुर्भाव के बाद भी यह संबंध बड़ी सहनशीलता से बनाए रखा गया है। इससे यह प्रकट होता है कि भारत निष्ठापूर्वक विश्व शांति के प्रवर्तन के लिए कटिबद्ध है। यह बात हमारे संविधान के अनुच्छेद 51 में भी कही गई है। अनुच्छेद 51, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। राज्य क अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का, ख राष्ट्रों के बीच न्याय संगत और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखने का, ग संगठित लोगों को एक दूसरे से व्यवहारों में अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाने का, और घ अंतर्राष्ट्रीय विवादों के माध्यमस्थ द्वारा निपटारे के लिए प्रोत्साहन देने का प्रयास करेगा। संविधान में जिस बंधुता की बात कही गई है वह राष्ट्र की सीमा तक ही बंधी हुई नहीं है, वह उससे बाहर जाकर वसुधैव कुटुंबकम के ऊंचे आदर्श तक पहुंचने के लिए है। इसे पंडित नेहरू के स्मरणीय शब्दों में बड़े सुंदर ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। हमारा अन्य राष्ट्रों के साथ मिलकर एक यही सामान्य उद्देश्य संभव हो सकता है कि हम मिलकर विश्व के लिए एक संरचना तैयार करें, चाहे उसे एक विश्व कहें या कुछ और। भारत अपने क्रियाकलाप का प्रबंध स्वयं करने की संप्रभुता की घोषणा स्पष्ट शब्दों में करता है, किंतु संविधान निसंगततावाद या उद्धत राष्ट्रवाद का समर्थन नहीं करता। भारत की प्रभुता एक विश्व की संकल्पना से या अंतर्राष्ट्रीय शांति और मैत्री से असंगत नहीं है। लोकतंत्र, लोकतंत्र उद्देशिका में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जो चित्र है वह लोकतंत्र राजनैतिक और सामाजिक दोनों ही दृष्टिकोण से है। दूसरे शब्दों में न केवल शासन में लोकतंत्र होगा बल्कि समाज भी लोकतंत्रात्मक होगा, जिसमें न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता की भावना होगी। प्रतिनिधिक लोकतंत्र शासन की पद्धति के रूप में जिस लोकतंत्र की कल्पना की गई है वह प्रतिनिधिक लोकतंत्र है। हमारे संविधान में जनमत संग्रह या पहल जैसे कोई अभिकरण नहीं है जिनके द्वारा जनता शासन के प्रत्यक्ष नियंत्रण हो। भारत के लोग अपनी प्रभुता का प्रयोग केंद्र में संसद के माध्यम से और प्रत्येक राज्य में विधानमंडल के माध्यम से करते हैं। ये वयस्क मत के आधार पर निर्वाचित होते हैं। कार्यपालिका अर्थात मंत्रिपरिषद इन्हीं के प्रति उत्तरदायी है। संघ के अध्यक्ष के रूप में एक राष्ट्रपति निर्वाचित होता है और प्रत्येक राज्य के अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति द्वारा एक राज्यपाल नामा निर्दिष्ट होता है, किंतु मंत्रिपरिषद के सलाह के बिना ये कोई राजनीतिक कृत्य नहीं कर सकते, उन कृत्यों को छोड़कर जिनका अपने विवेकानुसार या अपने व्यक्तिगत उत्तरदायित्व पर निर्वहन करने के लिए राज्यपाल को संविधान द्वारा प्राधिकृत किया गया है। मंत्रिपरिषद अपने अपने विधानमंडलों में जनता के प्रतिनिधियों के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी हैं। संविधान सभी नागरिकों को अपने प्रतिनिधि चुनने के विषय में समानता प्रदान करता है। ये प्रतिनिधि सरकारी तंत्र को चलाते हैं। जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। भारत के संविधान की उद्देशिका में लोकतंत्रात्मक गणराज्य का जो आदर्श स्थापित किया गया है उसे स्पष्ट करने के लिए दो निर्देश पर्याप्त हैं। एक तो सभी लोगों के लिए मताधिकार, जिसे हम पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, और दूसरे स्त्री पुरुष में समानता। यह समानता न केवल विधि के क्षेत्र में है बल्कि राजनैतिक क्षेत्र में भी। राजनैतिक न्याय से यह तात्पर्य है कि राजनैतिक क्षेत्र में मनुष्य और मनुष्य के बीच कोई मनमाना विभेद नहीं किया जाएगा। उद्देशिका में जिस राजनैतिक न्याय की बात कही गई है उसे सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक था कि भारत के राज्य क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति उसकी संपत्ति और शिक्षा पर ध्यान दिए बिना राजनैतिक व्यवस्था में भाग ले सके। बिना किसी शर्त के सार्वजनिक मताधिकार को इसलिए स्वीकार किया गया, इसका अर्थ यह हुआ कि प्रत्येक 5 वर्ष में संघ और प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के सदस्य समस्त वयस्क जनता के मत से निर्वाचित होंगे और इस निर्वाचन का सिद्धांत होगा एक व्यक्ति का एक मत। ख लोक नियोजन के विषय में भी जाति और मत पर ध्यान दिए बिना स्त्रियों और पुरुषों के अवसर की समानता प्रदान करना भी लोकतंत्र के उद्देश्य की पूर्ति है। इन संवैधानिक रक्षोपायों के अतिरिक्त अल्पसंख्यकों के साथ संविधान में जो व्यवहार है उससे यह भली भांति प्रकट हो जाता है कि जो सत्ता में है उन्होंने संविधान के पीछे के दर्शन की उपेक्षा नहीं की है। संघ और राज्यों की मंत्रिपरिषद में, उच्चतम न्यायालय में, राजनयिक मिशनों में मुस्लिम और ईसाई समुदाय के सदस्य सम्मिलित किए जाते हैं, यद्यपि संविधान में उनके लिए कोई आरक्षण नहीं है। इससे यह प्रकट हो जाता है कि जो संविधान को क्रियान्वित कर रहे हैं उन्होंने संविधान की भावना को छोड़ा नहीं है, अर्थात यह कि प्रत्येक नागरिक को यह अनुभव होना चाहिए कि उस देश यह देश उसका अपना देश है। यह लोकतांत्रिक समाज, यह लोकतांत्रिक गणराज्य सभी लोगों की भलाई के लिए है। यह सिद्धांत कल्याणकारी राज्य की संकल्पना में समाहित है। यह संकल्पना राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में अंतर्विष्ट है। उद्देशिका में जिस आर्थिक न्याय के सुनिश्चित किए जाने की बात कही गई है वह तभी प्राप्त हो सकेगा जब संविधान में जिस लोकतंत्र को दृष्टि में रखा गया है वह राजनीतिक लोकतंत्र तक ही सीमित न रहे। पंडित नेहरू के शब्दों में, भूतकाल में लोकतंत्र को राजनीतिक लोकतंत्र के रूप में ही पहचाना गया जिसे मोटे तौर से एक व्यक्ति का एक मत होता है, किंतु मत का उस व्यक्ति के लिए कोई महत्व नहीं होता जो निर्धन और निर्बल है, या ऐसे व्यक्ति के लिए जो भूखा है और भूख से मर रहा है। राजनीतिक लोकतंत्र अपने आप में पर्याप्त नहीं है, उसका आर्थिक लोकतंत्र और समानता में धीरे धीरे वृद्धि करने के लिए और जीवन की सुख सुविधाओं को दूसरे तक पहुंचाने के लिए तथा सभी असमानताओं को हटाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। इसी बात को डॉक्टर राधाकृष्णन ने इस प्रकार कहा था, जो गरीब लोग इधर उधर भटक रहे हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, जिन्हें कोई मजदूरी नहीं मिलती और जो भूख से मर रहे हैं, जो निरंतर कचोटने वाली गरीबी के शिकार हैं, वे संविधान या उसकी विधि का गर्व नहीं कर सकते। संक्षेप में, भारत का संविधान न केवल राजनीतिक बल्कि सामाजिक लोकतंत्र का भी वचन देता है। इस बात को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान सभा में अपने समापन भाषण में कहा था, यदि राजनीतिक लोकतंत्र का आधार सामाजिक लोकतंत्र नहीं है तो वह नष्ट हो जाएगा। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ है, इसका अर्थ है वह जीवन पद्धति जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता को मान्यता देती है, जिनमें ये दोनों अलग अलग न होकर त्रिमूर्ति के रूप में माने जाते हैं। वे इस त्रिमूर्ति का एकीकरण है। इस अर्थ में यदि एक को हम दूसरे से अलग कर दें तो लोकतंत्र का आशय निष्फल हो जाएगा। स्वतंत्रता को समानता से अलग नहीं किया जा सकता, समानता को स्वतंत्रता से पृथक नहीं किया जा सकता, इसी प्रकार स्वतंत्रता और समानता को बंधुत्व से विलग नहीं किया जा सकता। लोकतांत्रिक समाज में राज्य को अपनी शक्ति और स्वतंत्र और सारे नागरिकों की सह और आवेश रहित इच्छा से प्राप्त होती है। सामाजिक एवं आर्थिक प्रजातंत्र वह नींव है जिसके आधार पर भारतीय व्यवस्थित समाज में राजनीतिक प्रजातंत्र जीवन व्यतीत करने का मार्ग बनेगी। आर्थिक न्याय निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य का उद्देश्य जिनके पास धन है उनसे छीनकर निर्धनता का उन्मूलन करना नहीं है, बल्कि राष्ट्रीय धन और संपत्ति में अनेक गुना वृद्धि करके उनका सभी लोगों में साम्यपूर्ण वितरण करना है जो उत्पादन में अपना अभिधाय करते हैं। जिस सीमा तक हम इस उद्देश्य की प्राप्ति करेंगे उस सीमा तक हमारे इस उपमहाद्वीप में आर्थिक लोकतंत्र स्थापित होगा। संक्षेप में, आर्थिक न्याय का लक्ष्य आर्थिक लोकतंत्र और कल्याणकारी राज्य की स्थापना है। आर्थिक न्याय का आदर्श प्रतिष्ठा की समानता लाना और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा और अवसर की असमानता को दूर करके जीवन को सार्थक और सर्वोत्तम जीने योग्य बनाना है। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय मूल अधिकार है। सामाजिक न्याय सामाजिक ढांचे के विभिन्न समूहों और या वर्गों या व्यक्तियों के प्रतिद्वंद्वात्मक दावों या हितों में विधि द्वारा सामंजस्य पैदा करके सामाजिक असंतुलन को दूर करने का व्यापक रूप है जिसके द्वारा ही लोक कल्याणकारी राज्य बनाना संभव होगा। स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इन तीनों को विधि समस्त शासन के अधीन सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक न्याय देकर सुरक्षित एवं संरक्षित किया जाना है। स्वतंत्रता, सही अर्थ में लोकतंत्र की स्थापना तभी हो सकेगी जब स्वतंत्र और सभ्य जीवन के लिए आवश्यक न्यूनतम अधिकार समुदाय के प्रत्येक सदस्य को सुनिश्चित हो जाते हैं। उद्देशिका में व्यक्ति के इन आवश्यक अधिकारों का विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता के रूप में उल्लेख किया गया है। इन अधिकारों को संविधान के भाग 3 द्वारा राज्य के सभी प्राधिकारियों के विरुद्ध प्रत्याभूत किया गया है। यह सामान्य हित के लिए नीति निर्देशक तत्वों के क्रियान्वयन और 1976 के 42वें संशोधन द्वारा अंतः स्थापित मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 क के अधीन रहते हुए है। स्वतंत्रता को सामाजिक आत्मसंयम से संयुक्त और सामान्य प्रसन्नता के लिए सर्वाधिक लोगों की स्वतंत्रता के अधीन होना चाहिए। समानता, प्रत्येक व्यक्ति को कुछ अधिकार प्रत्याभूत करना अर्थहीन हो जाएगा यदि सामाजिक संरचना से असमानता दूर नहीं की जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिष्ठा और अवसर की समानता सुनिश्चित नहीं की जाती जिससे उसका सर्वोत्तम विकास हो सके तथा इन अधिकारों को प्रवृत्त कराने के साधन उसे प्रत्याभूत नहीं किए जाते हैं। संविधान में इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए एक नागरिक और दूसरे नागरिक के बीच राज्य द्वारा किए जाने वाले सभी विभेदों को अवैध घोषित किया गया है। ये ऐसे विभेद हैं जो केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर अनुच्छेद 15 में लिखित हैं। संविधान ने सभी सार्वजनिक स्थानों के सभी नागरिकों के लिए खोल दिया है, ऐसा अनुच्छेद 15(2) में वर्णित है। अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, ऐसा अनुच्छेद 17 में वर्णित है। सम्मान के लिए दी जाने वाली उपाधियों को समाप्त कर दिया गया है। राज्य के अधीन नियोजन से संबंधित सभी विषयों के लिए अवसर की समानता प्रदान की गई है, ऐसा अनुच्छेद 16 में वर्णित है। विधि के समक्ष समता या विधि के समान संरक्षण को ऐसा अधिकार बनाया गया है जिस पर न्यायालय निर्णय दे सकता है, ऐसा अनुच्छेद 14 में वर्णित है। नागरिक समानता सुनिश्चित करने के लिए उपरोक्त उपबंधों के अतिरिक्त संविधान में राजनीतिक समानता लाने के लिए सार्वजनिक वयस्क मताधिकार का उपबंध किया गया है, ऐसा अनुच्छेद 326 में वर्णित है कि किसी भी व्यक्ति को केवल धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर साधारण निर्वाचन नामावली से ना तो अपवर्जित किया जाएगा और ना ही किसी विशेष नामावली में सम्मिलित किया जाएगा। समाजवादी संरचना से समाजवाद की ओर। इन सब उद्देश्यों की प्राप्ति का अर्थ होगा राज्य के कृत्यों का विस्तार। संविधान ने जो ध्येय अपने समक्ष रखा है वह है कल्याणकारी राज्य और समाजवादी राज्य की स्थापना का। कांग्रेस ने 1955 में अवाड़ी में हुए अधिवेशन में एक संकल्प द्वारा समाज की समाजवादी संरचना के उद्देश्य को इस प्रकार अभिव्यक्त किया था। कांग्रेस के उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत के संविधान की उद्देशिका और राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में कथित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना इस प्रकार की जानी चाहिए कि समाज की समाजवादी संरचना की स्थापना हो सके। ऐसी संरचना जिसमें उत्पादन के मुख्य साधन सार्वजनिक स्वामित्व या नियंत्रण में हो, उत्पादन निरंतर वृद्धिगत हो और राष्ट्रीय धन का साम्यपूर्ण वितरण हो। इस उद्देश्य की प्राप्ति कितनी हुई यह अध्याय 9 में स्पष्ट किया जाएगा, जहां यह भी बताया जाएगा कि 1992 तक के वर्षों में समाजवादी संरचना से रूप बदलकर समाजवादी राज्य हो गया था, जिसके कारण उद्योग और प्राइवेट उद्यम के स्वामित्व और प्रबंध में आते जा रहे थे और राज्य स्वयं व्यापार और कारोबार चला रहे थे। संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में समाजवादी शब्द अंतः स्थापित करके यह सुनिश्चित किया गया था कि भारतीय राज्य व्यवस्था का ध्येय समाजवाद है। समाजवाद के ऊंचे आदर्शों को अभिव्यक्त रूप से दर्शित करने के लिए इसे अंतः स्थापित किया गया। यह ध्यान देने योग्य है कि भारत के संविधान द्वारा परिकल्पित समाजवाद राज्य के समाजवाद का वह प्रायिक ढांचा नहीं है जिसमें धन के सभी साधनों का राष्ट्रीयकरण किया जाता है और प्राइवेट संपत्ति का उत्सादन हो जाता है। प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा था, हमने यह सदैव कहा है कि हमारा समाजवाद अपने ढंग का है। हम उन्हीं क्षेत्रों में राष्ट्रीयकरण करेंगे जिनमें हम आवश्यकता समझते हैं। केवल राष्ट्रीयकरण करना यह हमारा समाजवाद नहीं है। समाजवाद शब्द का अर्थ स्पष्ट है, किंतु हमारे उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि उसका प्रमुख उद्देश्य आय, परिस्थिति और जीवन के स्तर में असमानता को दूर करना और श्रमजीवी लोगों को शिष्ट जीवन स्तर प्राप्त कराना है। अतएव भारत का संविधान प्राइवेट संपत्ति का उन्मूलन नहीं करता, किंतु उस पर कुछ निर्बंधन लगाता है जिससे उसका उपयोग राष्ट्रीय हित में किया जा सके। इसमें गरीबों को ऊपर उठाना भी सम्मिलित है। सभी संपत्ति और उद्योगों के पूर्ण राष्ट्रीयकरण के स्थान पर इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। यह सभी को अवसर की समानता प्रदान करता है और निहित स्वार्थों को समाप्त करता है। 1992 के पश्चात अब झुकाव समाजवाद से दूर और निजीकरण की ओर है। अनेकों लोक उद्यमों में जो विनिधान किया गया था उसे निकाला जा रहा है और उद्योग प्राइवेट व्यक्तियों को सौंपे जा रहे हैं। बहुत से उद्योग जो सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे अब प्राइवेट उद्यमों के लिए खोल दिए गए हैं। रूस और पूर्वी यूरोप के देशों में समाजवाद के पतन के पश्चात विश्व में जो रुख चल रहा है यह उसके अनुरूप है। संविधान 44वां संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा अनुच्छेद 31 को निरसन करने द्वारा संपत्ति के अर्जन पर प्राइवेट स्वामियों को प्रतिकर संदाय करने का संवैधानिक बाध्यता समाप्त कर दी गई है। इसे आगे अध्याय 8 में स्पष्ट किया जाएगा। राष्ट्र की एकता और अखंडता की आवश्यकता। इस विशाल उपमहाद्वीप के निवासियों में अनेक समस्याओं और विलगाववादी शक्तियों के कारण विभाजित हो रहे हैं। एकता स्थापित करना देश की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए और साथ ही लोकतंत्र के इस प्रयोग को सफल बनाने के लिए पहली आवश्यकता है। एकता के आदर्श को संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा उद्देशिका में और अखंडता शब्दों को जोड़कर बल प्रदान किया गया है, किंतु जनता में एकता या लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था तब तक सुनिश्चित नहीं हो सकेगी जब तक कि विभिन्न रंगों की इस जनता के बीच जो विभिन्न मूलवंश धर्म और सभ्यताओं की है बंधुता की भावना उत्पन्न न हो। संविधान के रचनाकारों ने बंधुता की जिस भावना का अभिनंदन किया था उसकी प्राप्ति एक ही समुदाय के विभिन्न अनुभागों के बीच अस्पृश्यता का उन्मूलन करने मात्र से नहीं हो जाएगी बल्कि सभी सामुदायिक या अनुभागिक अथवा स्थानीय या प्रांतीय ऐसी असामाजिक भावनाओं को समाप्त करना होगा जो भारत की एकता के मार्ग में बाधा पहुंचाती है। बंधुता। यदि सभी लोगों के बीच बंधुता की भावना उत्पन्न नहीं होगी तो हमारा लोकतंत्र खोखला रहेगा। यह भावना होनी चाहिए कि हम सभी एक ही मातृभूमि के पुत्र हैं। यह भारत जैसे देश के लिए और भी आवश्यक है क्योंकि यहाँ के लोग विभिन्न मूलवंश धर्म भाषा और संस्कृति वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत मानव अधिकार की घोषणा 1948 के अनुच्छेद 1 में यह कहा गया है, सभी मनुष्य जन्म से ही गरिमा और अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र और समान हैं। उन्हें बुद्धि और अंतश्चेतना प्रदान की गई है। उन्हें परस्पर भ्रातृत्व की भावना से कार्य करना चाहिए। हमारे संविधान की उद्देशिका में बंधुता की यही भावना दृष्टिगोचर होती है। पंथ निरपेक्ष राज्य जो सभी धर्मों की स्वतंत्रता प्रत्याभूत करता है। अनेक मतों के मानने वाले भारत के लोगों की एकता और उनमें बंधुता स्थापित करने के लिए संविधान में पंथ निरपेक्ष राज्य का आदर्श रखा गया है। इसका अर्थ है कि राज्य सभी मतों की समान रूप से रक्षा करेगा और स्वयं किसी भी मत को राज्य के धर्म के रूप में नहीं मानेगा। पंथ निरपेक्षता भावना का प्रश्न नहीं है, यह विधि द्वारा प्रतिपादित है। राज्य के इस पंथ निरपेक्ष उद्देश्य को विधि निर्दिष्ट रूप से उद्देशिका में संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द अंतः स्थापित करके सुनिश्चित किया गया है। पंथ निरपेक्षता संविधान के आधारिक लक्षणों में से एक है। 1976 का 42वां संशोधन। हमारे संविधान में किसी भी मत को राजकीय चर्च मानने की व्यवस्था नहीं है, ऐसा कुछ अन्य संविधानों में है। दूसरी ओर उद्देशिका में जिस विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का वचन दिया गया है उसे अनुच्छेद 25 से 29 में धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित सभी नागरिकों के मूल अधिकार के रूप में समाविष्ट करके क्रियान्वित किया गया है। ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को धर्म को मानने आचरण करने और प्रचार करने का अधिकार देते हैं तथा राज्य की ओर से और इसके साथ ही राज्य की विभिन्न संस्थाओं की ओर से सभी धर्मों के प्रति पूर्ण निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की सफलता का यह एक जगमगाता हुआ उदाहरण है जबकि उसके पड़ोसी जैसे पाकिस्तान बांग्लादेश श्रीलंका और बर्मा ने धर्म विशेष को राज्य का धर्म घोषित किया है। व्यक्ति की गरिमा। जब तक प्रत्येक सदस्य की गरिमा की रक्षा न की जाए तब तक बंधुता की स्थापना नहीं हो सकती। अतएव उद्देशिका में यह कहा गया है कि भारत में राज्य व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करेगा। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए संविधान प्रत्येक व्यक्ति को समान मूल अधिकार की प्रत्याभूति देता है, जिससे कि यदि उसके अधिकारों का हनन होता है तो वह अपने न्यूनतम अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवृत्त करा सकता है। यह ध्यान में रखते हुए कि यदि व्यक्ति को आभा और दुख से छुटकारा न मिले तो ये प्रवर्तनीय अधिकार उसकी गरिमा बनाए रखने के लिए पर्याप्त नहीं है। संविधान के भाग चार में बहुत से निर्देश सम्मिलित किए गए हैं, जिनमें राज्य को दिशा निर्देश दिया गया है कि वह अपनी आर्थिक और सामाजिक नीतियों की इस प्रकार रचना करे कि पुरुष और स्त्री सभी नागरिकों को समान रूप से जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त करने का अधिकार हो। अनुच्छेद 39 क ऐसा अनुच्छेद 39 क में वर्णित है। काम की न्यायसंगत और मानवोचित दशाएं हो, ऐसा अनुच्छेद 42 में वर्णित है। और शिष्ट जीवन स्तर और अवकाश का संपूर्ण उपभोग सुनिश्चित करने वाली काम की दशाएं तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर प्राप्त हो, ऐसा अनुच्छेद 43 में वर्णित है। हमारे उच्चतम न्यायालय ने यह अभी निर्धारित किया है कि गरिमा का अधिकार मूल अधिकार है। निर्धनता को मिटाने के लिए सामाजिक आर्थिक क्रांति लाने के लिए संविधान 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा निर्देशों को विस्तृत करके यह उपबंध किया गया कि निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए यदि कोई कदम उठाया जाता है तो उस पर न्यायालय में इस आधार पर आक्षेप नहीं किया जाएगा कि वह कदम किसी व्यक्ति के अनुच्छेद 14 या 19 के अधीन मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है। इसका स्पष्ट उद्देश्य यह है कि ऐसे कल्याणकारी उपायों को जो जनता के फायदे के लिए है निष्फल न कर दिए जाएं। मूल अधिकार उद्देशिका में अंतर्विष्ट दर्शन, जिसे पूर्वगामी पृष्ठों पर स्पष्ट किया गया है, इस बात से और भी स्पष्ट हो जाता है कि इस पर बल दिया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को संविधान के भाग तीन में प्रदत्त मूल अधिकार, उसकी अभिव्यक्ति, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, अवसर की समानता आदि सुनिश्चित करने के लिए प्राप्त होंगे। साथ ही उसका एक तत्समान मूल कर्तव्य भी होगा, जैसे भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करना आदि। संविधान में 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा एक अन्य अनुच्छेद 51 का अंतर स्थापित करके 10 मूल कर्तव्य अधिक कथित करके यह परिणाम प्राप्त किया गया है। हमारे संविधान की उद्देशिका की अंतर्वस्तु पर एक बहुत सुंदर टिप्पणी प्रोफेसर अर्नेस्ट बार्कर ने की है। प्रोफेसर बार्कर लोकतांत्रिक शासन के विषय में आधुनिक चिंतक हैं। उन्हीं के शब्दों में, स्वतंत्रता के उपभोग में सामर्थ्य और भावना होनी चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति में अपनी अस्मिता होनी चाहिए और साथ ही दूसरों की अस्मिता के प्रति आदर भी होना चाहिए, और यह बात संपूर्ण समाज में पाई जानी चाहिए। यह होने पर ही लोकतांत्रिक राज्य की वास्तव में प्राप्ति हो सकती है। यह ऐसे समुदाय में ही पाई जा सकती है जिसने भौतिक दृष्टि से एक पर्याप्त स्तर प्राप्त कर लिया हो और जिसमें पर्याप्त मात्रा में राष्ट्रीय समरसता हो, जिससे कि वह स्वतंत्रता के आदर्श के प्रति स्वयं को समर्पित कर सके। इस आदर्श के प्रति प्रत्येक व्यक्ति को मिलकर यह प्रयत्न करना होगा कि स्वतंत्रता सबको मिले। यदि भौतिक रूप में अस्तित्व की समस्या हल नहीं हुई है तो स्वतंत्र जीवन का आदर्श, या दूसरे शब्दों में एक विशिष्ट स्तर के जीवन के प्रति एक दिवास्वप्न ही रहेगी। यदि राष्ट्रीय समरसता की समस्या मुंह बाए खड़ी है और बंधुता की कोई समस्या सामान्य भावना नहीं है, यदि समाज के कुछ अंगों को आपस में शिक्षा कम करने के कारण या निम्न वंश के होने के कारण या किसी और आधार पर परकीय और बाहरी समझा जाता है, तो सामान्य स्वतंत्र जीवन का आदर्श कभी प्राप्त नहीं हो सकता। उद्देशिका में राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को समानता और बंधुता से जोड़ते हुए जो स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है, उसे महात्मा गांधी ने मेरे स्वप्नों का भारत कहकर वर्णित किया था, अर्थात ऐसा भारत जिसमें गरीब से गरीब भी यह समझेगा कि यह उसका देश है, जिसके निर्माण में उसका भी हाथ है। यह भारत जिसमें सभी समुदाय पूर्णतया समरस होकर रहेंगे, ऐसे भारत में अस्पृश्यता के श्राप के लिए या मादक पेय और स्वापक द्रव्यों के लिए कोई स्थान नहीं होगा। स्त्री और पुरुष समान अधिकारों का उपभोग करेंगे। हमारी उद्देशिका में किए गए इस सफल संयोजन की अर्नेस्ट बेकर ने भूरी भूरी प्रशंसा की है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी के प्रारंभिक भाग में उस उद्देशिका को उद्धृत किया है और यह संप्रेक्षण किया है कि भारत के संविधान की उद्देशिका में इस पुस्तक के समस्त तर्क संक्षेप में समाहित हैं और इस पुस्तक की कुंजी के रूप में कार्य कर सकती है। अध्याय समाप्त।